हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 426 अक्षत के पेरेंट्स के घर का हॉल। अक्षत की माँ वहां पर सिंगल वाले सोफे पर बैठी हुई हैं और उनके सामने ही अक्षत, विवान और नैना तीनों बड़े वाले काउच पर बैठे हुए उनकी तरफ ही देख रहे हैं और उनकी माँ नैना की तरफ गौर से देख रही है। वो लोग शायद कुछ बात कर रहे थे और तभी अक्षत ने कहा, मॉम, मैंने आपको नहीं बताया नैना के बारे में, क्योंकि हमारी बीच की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। और फिर कल मैंने नैना को शादी के लिए प्रपोज़ किया, क्योंकि मैंने ये काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था। अक्षत अपनी माँ को पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए वो सब कुछ समझा रहा है और नैना को तो ये सब पता ही है। उसे भी इस बारे में पता था कि अक्षत ने अब तक उसके बारे में घर पर नहीं बताया है और इसीलिए वो दोनों अब तक अक्षत के पेरेंट्स से मिलने नहीं आए थे। अक्षत की माँ उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सोचती हुई बोली, तुम्हें पता है ना अक्षत, अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा करियर होना चाहिए और ये लड़की। उन्होंने नैना की तरफ देखा और वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन फिर रुक गई और उन्होंने कहा, अक्षत देखो, तुम एक अडल्ट हो, आखिर हम तुम्हें ऐसे ही रोक नहीं सकते, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये पसंद नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की भी उसी लड़की की तरह निकलेगी। और सोचो, तुम इतने फेमस, इतने पैसे वाले हो, आखिर सब तुम्हारे पैसे की वजह से ही तो तुम्हारे साथ होंगी ना। अक्षत की माँ ने ना चाहते हुए नैना के सामने ही ये बात बोल दी और उसे सुनकर नैना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो एकदम रुआंसी हो गई और उसने आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका डर उसे अपने सामने एकदम सच होता ही नज़र आ रहा था। लेकिन अक्षत नैना के खिलाफ ये सब कुछ नहीं सुन पाया। उसने तुरंत ही नैना का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, नहीं माँ, नैना बिल्कुल भी रागिनी जैसी नहीं है और वो लड़की तो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसने तो झूठ भी बोला, और हम दोनों पिछले 6 महीने से साथ रह रहे हैं। हाँ, रागिनी की वजह से हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन तब भी नैना ने मुझे नहीं छोड़ा और वो हमेशा ही मुझ पर विश्वास करती थी और वो हमेशा ही मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। मॉम, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे, इसलिए प्लीज़ आप बिना उसे जाने समझे उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी मत सोचिए। अक्षत नैना की सफाई में इतना कुछ बोला तो फिर अक्षत की माँ की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखने लगी, जो कि उनके खिलाफ जाकर किसी और लड़की की तरफदारी में बोल रहा था। वहाँ पर बैठे विवान ने भी नैना की तरफ से बोला, हाँ मॉम, मैंने भी नैना के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, हमारी मूवी भी रिलीज़ हुई है और कल उसके प्रीमियर पर ही गए थे हम, तब से मैं भी नैना को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ मॉम, आप इतनी जल्दी जज मत करिए। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर अक्षत की माँ ने बहुत ही बेबसी से उनकी तरफ देखा। अपने दोनों बेटों को नैना की तरफ देखकर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने दांत पीस कर रह गईं, लेकिन अब उन्होंने नैना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो समझ गई हैं कि अपने दोनों बेटों के सामने नैना के खिलाफ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। और तभी नैना ने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, आंटी, मैं अक्षत से बहुत प्यार करती हूँ और आपको मुझ में क्या पसंद नहीं है, मैं खुद को चेंज करने के लिए भी तैयार हूँ आपके हिसाब से। नैना अक्षत से बहुत प्यार करती है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसके अलावा वो अपना प्यार उसके लिए साबित भी करना चाहती है। और नैना की ये बात सुनकर अक्षत की माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जैसे लालची मिडिल क्लास लोग कभी हमारे जैसे लोगों के साथ खड़े होने लायक भी नहीं बन सकते, चाहे तुम अपने आप को सिर से पैर तक पूरा बदल लो। ये बात बोलते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उन्होंने हिकरत भरी नज़र से नैना को घूरते हुए देखा तो अक्षत ने तुरंत ही नैना के सामने आते हुए कहा, मॉम, प्लीज़, आपको कोई हक नहीं है नैना को इस तरह से नीचा दिखाने का, और वो भले ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो लेकिन अभी वो अपनी मेहनत से इतना कुछ कर रही है और इतनी बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस भी है, उसे आगे भी काफ़ी सारा काम मिलने वाला है और वैसे भी किसी का पैसा और बैकग्राउंड ये डिसाइड नहीं करता कि वो कैसा है, आपने ही हम दोनों को ये सब सिखाया है और आज आप ही नैना को इस तरह से जज कर रही हैं, दैट्स नॉट राइट मॉम। अक्षत बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए बोला, जबकि नैना की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाते हुए उन्होंने अक्षत का ही हाथ पकड़ा और कहा, अक्षत, रहने दो, वो तुम्हारी मॉम है और तुम उनसे इस तरह से बात मत करो। नैना ने इस तरह से अक्षत को ही चुप कराते हुए कहा तो अक्षत ने बहुत ही डिसअपॉइंट होकर उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए उसने नहीं में अपना सिर हिलाया। नैना ने इस तरह से अक्षत को समझाया तो उसकी इस बात पर अक्षत की माँ ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, हाँ, अब ये महान बनने का ड्रामा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को अक्षत, और मुझे नहीं मिलना इस लड़की से, मिल लिया मैंने जितना मिलना था और जान भी गई हूँ, समझ भी गई हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन तुम्हारे रिश्ते को मेरी परमिशन कभी भी नहीं मिलेगी, कान खोलकर सुन लो अक्षत, बाकी तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो, आखिर मैं होती ही कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली। इतना बोलते हुए उन्होंने गुस्से से अक्षत की तरफ देखा और फिर नैना की तरफ और अक्षत नैना दोनों ने उनकी तरफ हैरानी से देखा और तभी अक्षत ने कहा, मॉम प्लीज आप ये सब क्या बोल रही हैं, नैना कोई महान बनने का नाटक नहीं कर रही, वो सच में ऐसी ही है। अक्षत ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उन्होंने अक्षत की एक बात नहीं सुनी और तेज कदमों से चलते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गईं। विवान ने भी वो सारा ड्रामा देखा और फिर उसने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई आप नैना के साथ घर जाओ, यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, डैड अभी घर पर है नहीं और मॉम का मूड तो आपने देख लिया है, मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ और मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन आप दोनों को अब वापस जाना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद अक्षत खुद भी वहां रुकना नहीं चाहता जहां पर नैना की इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई हो, लेकिन विवान की बात सुनकर नैना ने कहा, कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ वापस, तुम दोनों साथ में आ जाना और तुम अपनी मॉम से बात कर लो, उन्हें समझने की कोशिश करो, अक्षत वो तुम्हारी माँ है, वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगी। इतना बोलते हुए नैना ने अक्षत की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत ही फेक है क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है, पर वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से अक्षत और उसकी माँ के बीच का रिश्ता जरा भी खराब हो। नैना का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ देखते हुए अक्षत बोला, नहीं नैना तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, और रही मॉम की बात तो वो हमेशा से ही ऐसी है, मैंने और विवान ने पहले ही तुम्हें कहा था ना, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, लेकिन डैड को तुम जरूर पसंद आओगी और हम फिर कभी यहाँ पर आएंगे, या फिर डैड को मैं अपने घर पर ही बुला लूंगा तो वहां पर उनसे मिल लेना, बाकी रही और बात वो सब तो अब इन्हें पता चल ही गया है ना, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्षत ने इतना बोलते नैना का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से बाहर निकल आए।
घर से बाहर आकर उन लोगों ने देखा कि गेट के अंदर ही पार्किंग एरिया में उनकी कार खड़ी हुई है और ड्राइवर भी कार के अंदर ही था, और उन दोनों को देखते ही ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और वो दोनों एक साथ बैठकर वहां से वापस अपने बंगले के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में नैना बहुत ही उदास है और कुछ भी नहीं बोल रही, तो अक्षत ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, और इतना मत सोचो मेरी मॉम के बारे में, वो मुँह फट है, वो सबके मुँह पर ही बोल देती हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगी, अभी वो तुम्हें जानती नहीं है ना कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारी क्वालिटीज़, तुम्हारा नेचर, सब कुछ कितना अमेजिंग है। अक्षत उसे कंसोल करने के लिए ये सब कुछ बोल रहा है तो नैना ने ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराया कर उसकी तरफ देखा और धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसके कंधे पर अपना सिर झुका लिया और अपनी आँखें बंद कर लीं, और गाड़ी तेज़ रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। लेकिन वापसी के वक्त विवान उनके साथ नहीं है, वो वहाँ पर ही रुक गया है अपनी मॉम से बात करके उन्हें समझाने और उनका मूड देखने के लिए। दूसरी तरफ मनस्वी होश में आ गई, लेकिन आदित्य फिर भी उससे मिलने नहीं गया क्योंकि उनके बीच की राइवलरी अभी भी पूरी खत्म नहीं हुई है और आदित्य मनस्वी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, और उसे पता है मनस्वी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए उसके सामने जाकर वो उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। वैसे भी आदित्य अनय से ही मिलने ही वहां पर आया था और उसे समझा बुझाकर उसे बताया कि अगर वो सच में मनस्वी से प्यार करने लगा है तो उसे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो और भी ऐसी हरकतें कर सकती है, और उसे प्यार से ही समझाना चाहिए, ऐसे लोगों से इसी तरह से डील जाती है। आदित्य ने उसे ये सब कुछ समझाया और फिर वहां से निकल गया, और आदित्य अभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही है और नीचे पार्किंग एरिया में जाने वाली लिफ्ट की तरफ ही बढ़ रहा है कि एक तभी वो सामने से उसकी तरफ भाग कर आई हुई एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी घबराई हुई लग रही थी, वो एकदम से आदित्य की तरफ भागते हुए आई और जैसे ही उससे टकराई उस लड़की ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज हेल्प मी, वो लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, वो मेरा अबॉर्शन करवा देंगे, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। उस लड़की की ये बात सुनकर आदित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम हो कौन और मैं कैसे बचा लूं तुम्हें, क्या होला है यहाँ पर और ऐसे कैसे तुम्हारी मर्जी के बिना वो लोग तुम्हारा अबॉर्शन करवा सकते हैं, चलो मैं बात करता हूँ। इतना बोलते हुए आदित्य उस तरफ आगे बढ़ा, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे वहीं पर रोक लिया और बहुत उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी, और आदित्य को वहां उसे उस लड़की के पीछे आता हुआ कोई भी नज़र नहीं आया, तो आदित्य ने बहुत ही शक भरी नजरों से उस लड़की की तरफ घूर कर देखा। क्रमशः